नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की सफल जापान यात्रा के बाद आज चीन के लिए रवाना हो गए हैं। चीन में श्री मोदी 25वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी दो दिन के शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के साथ उच्च स्तरीय विचार विमर्श में शामिल होंगे।
यह पांचवी बार है जब चीन शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें 20 से अधिक देशों के शीर्ष नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के भाग लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रमुख प्रतिभागियों में शामिल है। अब होल्डिंग द शंघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव थीम के तहत चीन ने वर्ष 2025 को SCO सतत विकास का वर्ष घोषित किया है। सम्मेलन में संगठन की 25 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, तियानजिन।
इससे पहले जापान यात्रा के पहले दिन 15वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज टोक्यो में 16 प्रांतों के राज्यपालों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राज्यपालों को भारत की विकास गाथा में भागीदारी बनने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद श्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे। उन्होंने सेमीकंडक्टर उत्पादन के एक प्रमुख निर्माता टोक्यो इलेक्ट्रॉन कारखाने का दौरा किया। कल वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी और श्री इशिबा ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और कई समझौतों का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत जापान मित्रता नई ऊंचाइयों को छुएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा को पश्मीना शॉल, चांदी के चॉपस्टिक और पत्थर के बाउल उपहार में दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि अस्तित्व और प्रगति की एक शर्त है। आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का मत है कि आत्मनिर्भर भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता की रक्षा कर सकता है। जम्मू और कश्मीर में पिछले 12 घंटों के दौरान जम्मू संभाग के रामबन और रियासी जिलों में भूस्खलन और फटने की घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू संभाग में रेल यातायात आज लगातार पांचवें दिन पूरी तरह बंद रहा और अगले कुछ दिनों तक बाधित रहेगा। उधमपुर रामबन क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए कई भूस्खलनों से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी लगातार पांचवें दिन वाहनों के आवागमन के लिए बंद है। उधर पंजाब में पहाड़ी इलाकों से हो रहे पानी के तेज प्रवाह से राज्य में जनजीवन प्रभावित हुआ है। रावी नदी में अब तक 14.11 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आ चुका है। राज्य में घग्गर नदी उफान पर है। राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में अलग अलग स्थानों पर तथा कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह 5 तिमाही में सबसे अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में GDP में 7.4% की रही थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 6.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार नॉमिनल GDP में 8.8% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन अनुमानों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत सुधारों से प्रेरित वैश्विक विकास इंजन है।
हमारी जो अर्थव्यवस्था है 2014 में $2 ट्रिलियन की थी, 11वें स्थान पे थे विश्व भर में, हम फिर 5वें स्थान पे पहुंचे, आज 4थे स्थान पर हैं। पर कुछ ही समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है GDP विश्व भर में 30वें स्थान पे आएगी।
भारतीय महिला हॉकी टीम शुक्रवार से शुरू हो रहे एशिया कप में भाग लेने के लिए आज चीन के हांगजू रवाना होगी। कप्तान सलीमा टेटी के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम इस टूर्नामेंट को जीतकर अगले साल होने वाले हॉकी विश्व कप में अपना स्थान पक्का करने की कोशिश करेंगी। भारतीय टीम ने महिला हॉकी एशिया कप 2004 और 2017 में 2 बार जीता है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।